विष्णुपादाय कृष्णपेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने जय श्रील प्रभुपाद। दसम स्कंध प्रारंभ करते हुए महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, क्योंकि नवम स्कंध के 24वें अध्याय में भगवान कृष्ण का वर्णन है, थोड़ा सा जन्म का प्रसंग, तो उसमें उन्होंने बताया है कि भगवान कृष्ण गृहस्थ जीवन का आदर्श दिखाने के लिए मथुरा और बाद में द्वारका चले आए। पर अति संक्षेप में इस पर महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव, आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश का विस्तार से वर्णन किया है, वैसे ही विस्तार के साथ में यदुवंश का वर्णन सुना है। अब मैं इसी वंश में अवतीर्ण भगवान कृष्ण का चरित्र सुनना चाहता हूँ। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य भवता, हे मुनिवर, आपने वंश विस्तार का वर्णन किया। वंश विस्तार मतलब वंश में प्रधान पुरुष, इसके बाद पुत्र पौत्र आदि बहुत वर्णन किया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि पहले सूर्य का नाम क्यों लिया महाराज परीक्षित ने? नहीं, चंद का, सोम सूर्य, सोम और सूर्य के वंश का विस्तार किया। तो इसका कारण प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्योंकि सोम वंश अधिक गरिमामय है, इसी वंश में स्वयं साक्षात भगवान अवतार लिए, और सूर्य वंश भी अद्भुत है। सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजाओं का आपने वर्णन किया है, परम अद्भुतम। इन दोनों वंशों में अद्भुत चरित्र वाले राजा हुए, परमाद्भुतम। यद्यपि यहाँ समय नहीं है कि इनका विस्तार किया जा सके, परंतु दोनों वंशों में विशिष्ट राजाओं का जो अद्भुत चरित्र है तो थोड़ा कहा जाएगा। नवम स्कंध में आप लोगों ने पढ़ा होगा सूर्य वंश का वर्णन। तो उस वर्णन में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि सबसे पहले सत्यव्रत महाराज हुए, जो भगवान के द्वारा मनु महाराज के पद पर नियुक्त किए गए। भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर के हयग्रीव दैत्य का वध करके और विवस्वान को मनु महाराज का पद दिया। इस विवस्वान की चर्चा श्रीमद् भगवद गीता में है। इमं विवस्वते योगं उक्तवान हमद्वयम्। मैं इस गीता का ज्ञान पहले विवस्वान को दिया था। विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया। पर मनु ने इक्ष्वाकु महाराज को दिया। मनोरिक्षवाकवे बड़े एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियों के लिए। इस दिव्य ज्ञान को राजर्षियों ने परंपरा से प्राप्त किया। सबसे पहले भगवान के द्वारा उपदेश हुआ इस ज्ञान का। भगवान ने विवस्वान को दिया। विवस्वान सूर्य का एक नाम है। विवस्वान इमं विवस्वते योगम, इस योग को, दिव्य ज्ञान को मैं विवस्वान को दिया। विवस्वान मनु को दिए। इसी वंश में उत्पन्न मनु हुए सत्यव्रत महाराज। सत्यव्रत नाम दिया भगवान ने उसके बाद। सुखदेव जी कहते हैं कि इसी सत्यव्रत को सूर्य ने ज्ञान दिया और इसके बाद इक्ष्वाकु महाराज ज्ञान प्राप्त किए। इक्ष्वाकु बहुत प्रतापी राजा थे। सत्यव्रत के लिए भगवान ने मत्स्यावतार लिया। इमं राजर्षि विदुः इस ज्ञान को ग्रहण किया राजर्षियों ने, श्रेष्ठ राजाओं ने, क्योंकि भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। धर्म की रक्षा में जरूरी होता है दुष्टों का दमन करना, और यह कार्य क्षत्रिय ही कर सकते हैं। इसलिए भगवान प्रायः जब अवतार लेते हैं मनुष्य का अवतार, जब ये क्षत्रिय कुल में लेते हैं, क्षत्रिय अधर्म का उल्लंघन करने वालों को दंड भी देते हैं। इसीलिए भगवान का अवतार प्रायः क्षत्रिय कुल में होता है। ऐसे ब्राह्मण में भी उनका अवतार हुआ, ऐसे भगवान परशुराम बहुत मार काट किए, 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिए। उनके पिता का वध हो गया था, इस कारण उनके माता रेणुका छाती पीट पीट करके रो रही थी। 21 बार वो विलाप की थी, रोई थी, छाती पीटी थी। तो भगवान ने प्रतिज्ञा किया कि पिता की हत्या करने वाले क्षत्रियों का मैं वध करूँगा। इक्कीस बार वध किया घूम घूम करके, 21 राउंड रुक गए। इस पर एक भक्त पूछा था कि इसके बाद क्षत्रिय बच के गए हैं। मैं बताया कि ये तो सृष्टि है, चलती रहती है। 22वें बार वध करने के लिए छोड़ दिया। तो सूर्य वंश और चंद्र वंश के विशिष्ट राजाओं का जो परम अद्भुत चरित्र है, इस प्रकार से सतपत महाराज जो भगवान के अवतार के लिए प्रयास किए, इनके लिए भगवान ने अवतार लिया। और ऋषियों के साथ सतव्रत महाराज को नौका पर बैठा कर पूरा प्रलय समुद्र में विहार किया। प्रलय पयोधि जले धृतवान सिवेदम विहित वहित चरित्र केशव धीत मीन शरीर जय जगदीश। जयदेव महाकवि ने दशावतार में सबसे पहले मत्स्य भगवान का स्मरण किया। इसको गलत अब लगाए हैं, नीचे रह करके इसको ऊपर किए, इसको ऊपर। विवस्मान के पुत्र हुए जब मनु महाराज बने, मनु महाराज ने कई पुत्र प्राप्त किए। सबसे बड़ा नाम था उसका सुदुम्न। सुदुम्न के जन्म के पहले उसकी माता ने ब्राह्मणों से प्रार्थना कर किया कि हमको बेटी चाहिए, ऐसा मंत्र पढ़िए कि हमको कन्या प्राप्त हो। जब कन्या हुई तब मनु महाराज ने ब्राह्मणों से पूछा, ये संकल्प तो पुत्र प्राप्ति के लिए हुआ था, कन्या कैसे हो गई? ऐसा नहीं होना चाहिए, वेद का यह विपरीत फल नहीं होना चाहिए। या तो आप लोगों के मंत्र पढ़ने में दिक्कत कुछ हुआ या शुद्धि यज्ञ में हो गई। तब ब्राह्मणों ने बताया कि महाराज, रानी ने हम लोगों से यही कहा था कि कन्या प्राप्ति होनी चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा कि रानी का एक मत होगा, वो राजा का जी राजा की जो इच्छा होगी उसी को कहती होगी। तो हम लोगों की गलती हुई कि फिर आपसे पूछा नहीं, रानी का प्रस्ताव सुन करके वैसे ही संकल्प किया। तब महाराज सत्यव्रत बहुत नाखुश हुए। फिर उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ देव से प्रार्थना किया कि गुरुदेव किसी तरह से इस लड़की को लड़का बनाना चाहिए, क्योंकि यह लड़की राजा के पद पर तो होगी नहीं। तब वशिष्ठ जी भगवान श्री हरि का यजन किए, भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया कि इस लड़की को लड़का बना दिया जाए, तो भगवान की कृपा से सुदुम्न लड़का हो गए। लेकिन एक बार हिमालय में गया सैनिकों के साथ, मंत्रियों के साथ, तो एक क्षेत्र में जाते ही एक विजय क्षेत्र था, वहाँ प्रवेश करते ही वो पुनः स्त्री हो गया, सुदुम्न पुनः स्त्री हो गया, और उसके साथ जितने भी मंत्री सेना वगैरह थे सब लटरी पुलिस हो गए, महिला पुलिस हो गए, सबका लिंग विपर्य हो गया। जितने घोड़े थे सब घोड़ी हो गए, ऐसा क्या प्रभाव था उस क्षेत्र का। एक बार की बात है, ऋषि लोग जा रहे थे भगवान शिव शंकर का दर्शन करने, तो उन्होंने देख लिया कि भगवान शंकर पार्वती जी के साथ रम रहे हैं, तो ऋषि लोग को देख करके पार्वती जी झटपट उठ गई, तो शिव जी के गोद में बैठी थी, तो ऋषि लोग नहीं लौट आए, उनको देखा भगवान शिव ने कि वे लोग लौट रहे हैं, वे केदारनाथ की अपेक्षा बद्रीनारायण चले गए नर नारायण के आश्रम में। तो भगवान शिव ने कह दिया उस क्षेत्र के लिए कि इस क्षेत्र में कोई भी आएगा तो स्त्री हो जाएगा। भगवान शंकर के वरदान से ऐसी व्यवस्था हो गई। उस समय उस रिजर्व क्षेत्र से पुरुष बहुत बचते थे, कोई भूल करके भी नहीं जाता। जब सुदुम्न स्त्री हो गए तब पुनः भगवान परशुराम ने वशिष्ठ जी से राजा विनय कर लिया, क्योंकि वे चाहते थे कि उनके बाद उनका प्रतिनिधि पुरुष बने। तब वशिष्ठ जी ने निहोरा किया शिव जी से, भगवान शिव ने कहा मेरी बात तो अमोघ उठी नहीं होगी, लेकिन मैं भी व्यवस्था दे रहा हूँ, एक महीना ये स्त्री रहेगी और एक महीना पुरुष, एक ही देह में, या पुरुष एक महीना पुरुष रहेगा और दूसरे महीने में स्त्री हो जाएगी, क्योंकि हमें अपनी बात को सत्य रखना है। तो ये व्यवस्था दे करके पा करके निश्चिंत हो गए राजा सुदुम्न। और जब सुदुम्न लड़की बने थे पुनः, तो एक बार वे बुद्ध देव को देखे, तो बुद्ध देव बुद्ध माने ग्रह, जैसे मंगल बुध होता है, तो बुद्ध देव जो चंद्र चंद्रमा के पुत्र थे, वे मोहित हो गए उस लड़की पर। बुद्ध देवता के मोह से स्वर्ण हुआ सुदुम्न का स्त्री के रूप में, तो उससे एक पुत्र हुआ बहुत तेजस्वी, उसका नाम हुआ पुंडवा। महाराज पुंडवा चंद्रवंशी थे, पर उनकी माँ सूर्य वंश की थी। अतः वे चंद्रवंश के ही माने गए, क्योंकि चंद्रमा के अंश से बुध और बुध से पैदा हुए। ये अद्भुत चरित्र है, ये कहीं शरीर से स्त्री रहना और पुरुष नहीं। और चंद्र वंश के राजा उगवा हुए बहुत प्रतापी राजा, ये मनुष्य थे, पृथ्वी पर प्रयागराज में रहते थे, प्रयागराज इनकी राजधानी थी, झूसी एक स्थान है आज भी, वहीं इनकी राजधानी थी झूसी। एक बार स्वर्गलोक से उर्वशी अपने आप आई उनके पास, उर्वशी जो स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा है, उनके पास आई। उसको देख करके महाराज के नेत्र खिल गए, उन्होंने तुरंत प्रस्ताव रखा, देवी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या तुम मेरी पत्नी बन सकती हो। यह सुन करके उर्वशी कहती है, महाराज आपके विषय में सुन करके आपको देख करके कौन स्त्री धीरज रख सकती है। मैं आपके पास आई हूँ, आपके साथ विहार करूँगी। ऐसा अद्भुत चरित्र की स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी अपने आप आई इनके पास। पर इनकी पत्नी बनने के लिए तैयार हो गई। मनुष्य भूल जाता है कि यह जीवन क्षणिक है, किसी दिन में सब विहार वैभव समाप्त होने वाला है। महाराज पुरवा भूल गए, पूर्वशी ने एक शर्त रखा था, आपके पास मैं दो भेड़ के बच्चा छोड़ रही हूँ, इनकी रक्षा कीजिएगा, धरोहर रख रहे हैं। तो राजा ने ये विचार नहीं किया कि इस शर्त के पीछे क्या रहा, वो तो कुछ ही वर्ष के लिए आए थे, उसको तो जाना था, तो इसीलिए शर्त रख दिया। और दूसरा शर्त, मैं मैथुन के अलावा आपको नग्न नहीं देखना चाहती, मेरे सामने नग्न होइएगा केवल स्त्री संग के समय, अब बाकी समय में कहना ही, तो मैं आपको नग्न नहीं देख पाऊँ। मेरा भोजन होगा केवल घी, गाय का घी। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, उनको किस चीज की कमी थी। कुछ वर्षों के बाद इंद्र सभा में बैठे थे, वे लगे कहने गंधर्वों से, उर्वशी के बिना हमारा स्वर्ग फीका लग रहा है, उसको लाओ। वे लोग पता लगाए उर्वशी प्रयागराज पहुंची थी, महाराज पुरवा के साथ। तो वे लोग भेड़ के बच्चे को हर लिए, भेड़ के बच्चे जब बे बे या मे करने लगे, तो उर्वशी तीखा प्रहार करने लगी राजा पुरवा पर, तुम नारी की तरह सो रहे हो, तुम्हें कोई पुरुषार्थ नहीं है। मैं बेकार तुम्हारे चक्कर में पड़ गया, तुम एक अबला हो, तुम्हें कोई बल नहीं है, इतने बड़े राजा को इतना कठोर शब्द बोल रहे थे। और जब भेड़ को लेकर के गंधर्व जा रहे थे, उर्वशी की बात से तिलमिला करके महाराज पूर्वा भेड़ के बच्चों को लौटाने के लिए गए। जब वे उनके पास पहुँचे तब गंधर्व चमकने लगे, उनका शरीर चमकने लगा, पूरा लाइट हो गया। और उस समय राजा पूर्वा होश में नहीं थे, नग्न थे, उस प्रकाश में उर्वशी ने देखा कि ये नग्न है इस पर इस समय, तो बस वो जाने लगे। ये पृथ्वी पर घूमते थे पागल की तरह। एक बार कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उर्वशी दिखाई पड़ी, तो राजा पूर्वा कहने लगे, तुमको न पा करके मैं मर जाऊंगा, मेरा यह शरीर भेड़िया खा जाएंगे। तुम एक रात रुको, लेकिन उर्वशी कहती है मैं एक क्षण नहीं रुकूंगी। अब हो गया, उर्वशी कहती है मैं साल में एक दिन आपके पास आऊंगी। एक बात आपके साथ हमारा संग होगा, साल में एक बार, और आपके संग से मुझे और भी प्राप्त पुत्र प्राप्त होंगे। इसका अर्थ है कि उर्वशी गर्भवती हो चुकी देवी है ना, गर्भ को मनमाना समय तक रख सकते थे। तो कहती है कि आपसे हमको और पुत्र प्राप्त होंगे। अभी मैं अंतर्वत्नी हूँ, गर्भवती हूँ, कहती है महाराज आप राजा हैं, पुरुष हैं, धीरज रखिए, आपका शरीर ऐसे नष्ट नहीं होना चाहिए। इतना अधीर मत होइए, यदि आप मुझे चाहते हैं तो गंधर्वों से विनय कीजिए। नहीं, गंधर्वों के द्वारा एक लकड़ी प्राप्त हुई, उसी को महाराज पूर्वा उर्वशी मान करके लिपटे रहते थे। और यज्ञ किए, यज्ञ करके वसीला फिर से प्राप्त किए। परंतु श्री नारद जी के कृपा से उन्हें स्वर्ग से वैराग्य हो गया। उर्वशी का मोह छूट गया है और वे आत्मा राम होकर के पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। कहीं उनकी आसक्ति नहीं रह गई। जिस उर्वशी के लिए वे रोते थे उसको नरक समझ करके उन्होंने त्याग दिया मन में भी। इस कथा को स्वयं भगवान उद्धव जी से कहे हैं। कहते हैं कि उर्वा मेरा भक्त होकर के सारी आसक्ति से मुक्त हो गए और मेरी भक्ति में रमते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे, स्वर्ग छोड़ दिए, पृथ्वी पर आ गए। इस दृष्टि से सबसे सुंदर स्थान यह पृथ्वी है और पृथ्वी में भी भारतवर्ष। राजा पुनर्वा का चरित्र कहा, थोड़ा सा कहा। श्री चंद्रवंश में एक राजा हुए जजाति, इनका भी चरित्र अद्भुत चरित्र है। इनका दो विवाह हुआ, एक ब्राह्मणी से और एक क्षत्रिय से। दो विवाह क्यों हुआ था इसके बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। एक बार शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और विश्वपर्वा राजा की पुत्री शर्मिष्ठा सखियों के साथ उद्यान में विहार कर रहे थे। बहुत सुंदर उद्यान था, तो उसमें भ्रमण करते करते इनको नहाने की इच्छा हो गई। स्त्रियों में आपस में लज्जा नहीं होती है, वे अपने अपने वस्त्र को सरोवर के किनारे रख करके स्नान करने लगी। तब तक दैव इच्छा से भगवान शिव माता पार्वती के साथ बैल पर चढ़े चढ़े उस ओर आ गए। भगवान शिव को देख करके इनको बड़ा लज्जा हुई। इन लड़कियाँ निकल करके सरोवर से झटपट अपना वस्त्र पहनने लगी। शर्मिष्ठा की साड़ी देवयानी के साड़ी से एक रंग की थी, मिल कर रही थी। इस कारण से शर्मिष्ठा देवयानी को साड़ी को पहन ली। जल्दी योगी में ध्यान नहीं रहा तो गुरु पुत्री की साड़ी को पहन ली। इसको देख करके देवयानी बहुत क्रोधित हुई और दांत पीसते हुए कि तुम असुर वंश में जन्मी हुई और हम तो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ भृगुवंशी ब्राह्मण हैं, तुमने कैसे हमारा साड़ी पहन लिया। जैसे कुतिया जगह का घी पी जाए वैसे तुम मेरा साड़ी टच किया। ये सब घटना हुई दैव इच्छा से, किसी का प्लान नहीं। तो आपस में झगड़ा होने लगा देवयानी और शर्मिष्ठा में। शर्मिष्ठा मजबूत थी, क्षत्रिय थी, उसने बाह पकड़ करके जबरदस्ती देवयानी को कुएं में ढकेल दिया। क्रोध ऐसा होता है, पहले प्रेम से घूम रही थी उबल में और क्षण भर में ही भगवान शिव ने झगड़ा लगा दिया। वे लड़ गई और झोटा झोटी करके उसको पटक दिया। घर चली गई, कुछ बताई भी नहीं। भगवान की ऐसी प्रेरणा थी, महाराज जजाति को प्यास लगी तो प्यास से व्याकुल होकर के वे वन में घूमने लगे। घूमते घूमते वे एक कुआं के पास आए और कुआं में उन्होंने देखा कि परम सुंदरी लड़की गिरी है। उसको देखते ही उनको इच्छा हो गई विवाह करने की। तो तट को उन्होंने खान खोदा, डाउन किया, किसी तरह से उपाय से अपने चादर से गांठ बना करके उस कुएं में डाला और देवयानी का उद्धार किया। जब वो कुएं से बाहर आई, अंतिम सीढ़ी पर उसने महाराज का हाथ पकड़ा पानी ग्रहण किया। कुआं से बाहर आने पर उसने कहा कि महाराज आपने हमारा पानी ग्रहण किया है, ये आपके प्लान से, हमारे प्लान से नहीं, समाज के प्लान से नहीं है, ये भगवान का प्लान है। हमको क्या पता था कि आप कुआं पर आएंगे। तो ये ईश्वर के द्वारा लिखा हुआ नियम संबंध है, आप हमको स्वीकार करें। तो महाराज जगाती कहते हैं आप एक ब्राह्मणी हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, ये संबंध कैसे हो सकता है। तो उसने कहा कि मैं ब्राह्मणी हूँ लेकिन मेरा ब्राह्मण के साथ विवाह नहीं होगा। तो इस पर कथा सुनाने लगी। एक बार गुरु बृहस्पति जी के पुत्र हमारे पिता के यहाँ पढ़ने आए थे, मृत संजीवनी विद्या। देवता लोग भी नहीं जानते इस विद्या को, देवताओं के गुरु भी नहीं जानते। तो उन्होंने पढ़ने के लिए भेज दिया था शुक्राचार्य को। जबकि शुक्राचार्य ने और बृहस्पति जी ने बहुत टेंशन रहता, झगड़ा रहता है। पर पहले के लोग विद्या दान करने में उदार थे, ये पढ़ाए शुक्राचार्य जी विद्या दिए बृहस्पति के लड़के पुत्र को। जब गुरुकुल में रह रहे थे उनका नाम कच था, तो कच बहुत सुंदर थे, इसलिए देवयानी की इच्छा हो गई विवाह करने की। उसने प्रस्ताव रखा कि आप विवाह के योग्य हो गए हैं और हमारा आपका कुल एक है, कहता है आप हमसे विवाह कर लें। कच ने कहा नहीं, तुम गुरुपुत्री हो, मैंने आचार्य शुक्र से बहुत बड़ी विद्या पढ़ी है, तो इसलिए तुम गुरु के समान ही पूज्य हो, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूँगा। यह सुनते ही देवयानी ने कहा यदि तुम मेरे साथ विवाह नहीं करते हो तो मेरे पिता के द्वारा पढ़ी हुई विद्या सब भूल जाओ। पहले कच्छ को साथ दिया कि ब्राह्मण के मेरे पिता के द्वारा पढ़ी हुई विद्या मेडिकल साइंस टोटल भूल जाओ। तब कच ने साथ दे दिया हमको, देवानी कहती है किसी भी ब्राह्मण से तुम्हारा विवाह नहीं होगा। तो महाराज जजाति से देवानी कहती है किसी भी हालत में ब्राह्मण से मेरा विवाह नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय का नंबर, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। जब मेरा विवाह ब्राह्मण से होगा ही नहीं, ये ब्राह्मण का ही श्राप है, कच का, बृहस्पति जी के पुत्र का श्राप, तो इसलिए आप क्षत्रिय हैं तुमसे विवाह कर लीजिए। सब तरह से विचार करके महाराज जजाति समझ गए कि यह ईश्वर की इच्छा है। क्योंकि अकस्मात मुझे इस उपवन में प्यास लगना, प्यास लगने पर कुआं के पास आना और कुएं में गिरी हुई इस लड़की को देखना, ये सब ईश्वर की का विधान था। महाराज आपने ये भी सोचा बेचारी का विवाह होगा ही नहीं ब्राह्मण से, ब्राह्मण का साप है, तब उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने इतना ही नहीं माना, उन्होंने कह दिया आपके पिताजी जब कन्यादान करेंगे तब मैं आपसे विवाह करूँगा। नहीं, महाराज जाति के जदू महाराज पुत्र थे, अनुद्रोही और पूर्वज, इनके पांच पुत्र थे, जदू अनुद्रोही दुर्वसु और पूर्व। जब कुएं से निकाल ले गए देवयानी तो गई अपने पिता के पास रोते हुए, कुएं से निकली तो घर रोते हुए गई, रो रो करके अपना दुख सुना रही कि पिताजी मैं तो मर गई थी, कुएं में तो गिरा गई थी सर्वनिष्ठा, इस तरह से मैं बच गई। महाराज जजाति आए कुआं के पास और उन्होंने मेरा उद्धार किया, मैं बच गई, जी गई। तो खूब बढ़ा चढ़ा करके सुनाई, मैं पिताजी से तुरंत राजधानी से निकल गए शुक्राचार्य। तो यह खबर पाते ही महाराज बृहस्पर्वा मंत्रियों के साथ मनाने गए, रास्ते में मनाए, बहुत प्रयास किए कि गुरु जी आप लड़ रह जाए, अन्यथा देवता सुनते, इंद्र आदि देवता सुनते कि शुक्राचार्य छोड़ दिए हैं असुरों को, तो हम पर आक्रमण करके हमारा सर्वनाश कर देंगे। तो ये ब्राह्मण कृपालु ठहरे, उन्होंने मान लिया बृहस्पर्वा के बाद, पर उन्होंने विवाह के करते हुए महाराज जजाति से कुछ शर्त किया। महाराज विवाह तो हो रहा है लेकिन आपसे एक बात है कि आप कभी भी शर्मिष्ठा के बेड पर मत जाइएगा, उसे सज्जा पर मत जाइएगा, अर्थात तो उसका संग मत कीजिएगा। लेकिन एक दिन की बात है, महाराज जजाति वो तो शर्मिष्ठा के भी पतित हैं। अतः शर्मिष्ठा ने एक दिन प्रार्थना किया राजा से कि महाराज धर्म के अनुसार मैं आपकी पत्नी हूँ, पता है आप मुझे पुत्र दीजिए, मेरी वध सुनी है, मैं चाहती हूँ पुत्रवती बनूं। पहले भगवान की इच्छा समझ करके महाराज जयाति भगवान को प्रणाम किए और शर्मिष्ठा के बेड पर गए। महाराज जयाति की तरह ये दोनों पुत्र परम सुंदर थे। उनकी आँखें, उनकी आकृति, भाषा सब महाराज जयाति जैसी थी। उसको देख करके देवयानी समझ गए कि ये राजा के पुत्र हैं। तब वह पति को छोड़ करके देवयानी मैंने देव जजाति महाराज को छोड़ करके अपने पिता के यहाँ जाने लगी। कहते रह गए कि तुम्हारे पिता एक परम तेजस्वी ब्राह्मण हैं, तुम लौट जाओ। लेकिन नहीं लौटी, स्त्रियां बहुत जिद्दी होती हैं, पति के यहाँ से रंज होकर के अपने पिता से शिकायत करने चली गई कि आपने कहा था शर्मिष्ठा से पुत्र उत्पन्न नहीं करना, लेकिन इसके दो पुत्र हो गए। तब शुक्राचार्य ने तुरंत कहा महाराज जयाति से, तुम इतने बड़े कामी हो लंपट, तुम इंद्रिय संयम नहीं कर सकते, तुमने जवानी के नशे में शर्मिष्ठा का संग किया। जब तुमको एक स्त्री थी तुमको संतोष नहीं हुआ, और इतनी बड़ी चेतावनी के बाद भी तुम शर्मिष्ठा से पुत्र उत्पन्न किए, ये सब जवानी के कारण हुआ। अतः अरे मूर्ख, तुम्हें तुरंत बुढ़ापा आ जाए, शुक्राचार्य की बात सुनते ही जयाति महाराज वृद्ध हो गए, बिल्कुल जैसे 90 साल का 95 साल का वृद्ध वृद्ध हो गए। उनके हाथ पैर कांपने लगे, सिर कांपने लगा, और उस दशा में भी वे कहते हैं मैं अभी तृप्त नहीं हूँ आपकी पुत्री से, कांप रहे हैं वृद्धावस्था के कारण। क्षण भर में फोल्ड हो गए, क्योंकि शरीर बूढ़ा हो जाने पर काम का नशा उतर जाता है, कई प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। ये कहते रह गए आपकी पुत्री से मैं तृप्त नहीं हूं, शुक्राचार्य ने क्षमा नहीं किया। रोते रह गए महाराज जाते गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उन्होंने अपना वचन लौटाया नहीं। ससुराल अपने ससुर के यहाँ गए थे बिल्कुल युवक, और लौटे वृद्ध बन कर के। उस ब्राह्मण को दया आ गई राजा की क्या दुर्दशा देखकर। राजा के रोने पर उनका चित्त बिगड़ गया, उन्होंने कह दिया ठीक है मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, तुम अपने पुत्रों के पास जाओ, जो पुत्र इस बुढ़ापा को ले ले और अपनी जवानी दे दे तो उसकी जवानी से तुम्हें धन मिल जाएगी और तुम्हारी बुढ़ापा चली जाएगी। तुम्हें लौटे आए आ करके उन्होंने सबसे पहला पुत्र जदु महाराज से कहा, बेटा अपने नाना के द्वारा दी हुई बुढ़ापा को ले लो और अपनी जवानी दे दो। जदु महाराज परम भक्त थे, भगवान से ही प्रेम करते थे। उन्होंने विचार किया कि पिताजी जवानी लेकर के तो कोई विषय भोग में रहेंगे, और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो भगवान का मंदिर मार्जन करना, प्रसाद बनाना, भगवान की विविध सेवा मुझसे नहीं हो पाएगी। पता पिता की बात को नहीं मानना ही ठीक है। इसकी व्याख्या कल आएगी। जदो से धर्म सिंह से नित्या मुनि सत्तम लेकिन तीन के जो पुत्र थे अनुग्रही और पूर्वसिंह, इनके बारे में सुखदेव गोस्वामी ने कहा है ये दुष्ट थे, जवानी को नित्य समझते थे। जवानी का दिन बहुत दिन नहीं रहता है, बुढ़ापा आ ही जाती है। ये अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जवान रहना चाहते, पिता के प्रार्थना करने पर भी साफ कह दिए हम नहीं चाहते, हम नहीं बूढ़ा होना चाहते हैं। तुम्हारे कर्म का फल है इसे भोगो चाहे कुछ करो। तब अंत सबसे छोटे पुत्र पुरुष से कहा महाराज राति ने, बेटा तुम अन्य भाइयों की तरह मुझे जवाब मत दो, अपने नाना के द्वारा दी गई बुढ़ापा को ले लो और अपनी जवानी दे दो। गुरु महाराज पितृभक्त थे, सबसे छोटे उम्र के लेकिन सबसे गुणवान। वे कहते हैं, पिताजी ये शरीर तो आपका ही दिया हुआ है, वास्तव में शरीर को उत्पन्न करने वाले माता पिता हैं, कुछ भी करके इनके ऋण से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। तो उस समय पूर्व महाराज पुत्रों की श्रेणी बता रहे हैं, उत्तम चिंतितम कुरियात प्रोत्कारित मध्यम। उत्तम पुत्र वह है जो पिता के इच्छा को जान करके पूरा कर देता है। सेकंड क्लास का पुत्र वह है जो कहने पर आज्ञा मानता है, कहना पड़ता है, पिताजी मुझे बहुत अफसोस है कि मैं उत्तम श्रेणी का पुत्र नहीं बन सका, मुझे तो आपकी इच्छा जान करके आपके बिना कहे जवानी दे देनी चाहिए थी, लेकिन आपको कहना पड़ा, इसका मुझे बहुत बड़ा खेद है। उसी प्रसंग में गुरु महाराज ने कहा है, यदि पिता प्रसन्न हो जाए तो उसकी कृपा से भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है। वास्तव में इस देह के जन्मदाता माता पिता हैं, उनका संग सेवा करके इस ऋण से मुक्त होना चाहिए। तनय जगात ही यौवन भय पितृ आज्ञा अजस्न भय। पिता की आज्ञा से पूर्व अपनी जवानी को दे दिए, पर पिता की आज्ञा से उन्हें कोई पाप नहीं लगा और अजस भी नहीं है, अब कीर्ति नहीं हुई। लाग्यम सुभय वंशानंद चरितम परमाद्भुतम, यही परम अद्भुत चरित है। और सूर्य वंश ने एक पुत्र हुए इक्ष्वाकु महाराज के, जिनका नाम भगवान गीता में बोले हैं मनोविख्यात है बड़े। मनु ने इक्ष्वाकु को यह ज्ञान दिया, तो इक्ष्वाकु महाराज प्रथम पुत्र नहीं थे, सुदुम्न आदि पुत्र थे, लेकिन जमुना जी ने महाराज इक्ष्वाकु ने बहुत तपस्या किया पुत्र प्राप्ति के लिए, तो उनको पुत्र प्राप्त हुए 10 पुत्र जिनमें इक्ष्वाकु प्रधान है। इक्ष्वाकु महाराज के एक पुत्र थे प्रसाद, मनु महाराज, एक नर गौशाला में गायों की रक्षा कर रहा है। वन में गौएं रहती थी, रात्रि के समय जग करके प्रसाद गोरक्षा कर रहे थे। रात का समय था, चंद्रमा भी नहीं उगे थे, कोई तारा नहीं उगे थे, प्रकाश नहीं था, अंधकार छाया था। उसी समय एक बाघ है गाय को पकड़ लिया, तो गाय चिल्लाई, उसकी चिल्लाहट को सुन करके रात को उठे प्रसाद महाराज। और अंधकार में ये अपने समझ से मारे बाघ को, लेकिन तलवार लग गया गाय के गर्दन पर, गाय मर गई। बाघ खून बहाता हुआ गया था। जब सवेरा हुआ तब सब लोगों ने देखा कि तो बाघ को, गाय को कौन मारा है। प्रसाद स्वीकार किया कि हमसे भूल से हो गई, अंधकार में मैं देख नहीं सका, मैं बाघ समझ करके मारा, लेकिन वो तलवार का नोक उसके कान पर लग गया, वो तो खून बहाता हुआ भाग गया, गाय मर गई। गुरु वशिष्ठ देव से पूछा गया अब इसमें क्या किया जाए, तो उन्होंने साफ कह दिया ये क्षत्रिय नहीं शूद्र है, इतनी असावधानी से गाय को मार दिया। तय शूद्र माना जाए। प्रसाद शूद्र हो गए तो वे वन में चले गए, राजधानी छोड़कर ऋषि हो गए, भगवान का भजन करने लगे। कवि उनका भाई था, वो छोटी अवस्था में ही भाई के साथ वन में चला गया। किशोर अवस्था में ही उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। इक्ष्वाकु महाराज जब दस पुत्र प्राप्त किए, उनमें एक पुत्र का नाम तीन था, ककुस्थ, इंद्रबाह और पुरंजय। तीनों नाम के पीछे तीन कारण थे। एक बार सतयुग के अंत में दैत्यों के साथ देवताओं का युद्ध हुआ। देवता और दानव में युद्ध होता ही रहता है। देवों की तरफ से इंद्र देव थे प्रधान, ऐसी देव की इच्छा देवता हारने लगे युद्ध में। प्रायः सब समय देवताओं की विजय होती है, लेकिन इस युद्ध में के हारने लगे। कोई भी उपाय करके इनके विजय नहीं हो रहे। इंद्र देव ने ब्रह्मा जी से कहा, देव आप कुछ उपाय बताएं। उस समय के राजा मनुष्यों में इक्ष्वाकु के पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने कहा, इक्ष्वाकु के पुत्र से कहो, तो इंद्र ने कहा, देवताओं ने सहायता के लिए प्रार्थना की, तो उन्होंने शर्त कर दिया, यदि इंद्र हमारा वाहन बनेंगे तो उन पर सवारी करके मैं युद्ध कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, देवताओं का बहुत बड़ा हित करना है, उसके लिए तुम बात मान लो। तुम वाहन बन जाओ, लेकिन इंद्र बनना नहीं चाहते थे। अंत में स्वयं भगवान ने कहा तुम बन जाओ वाहन। तो इंद्र बहुत बड़ा सांड बने, बहुत बड़ा बैल, जिनका ककुत गर्दन के बाल, गर्दन पिंड, गर्दन का मांस बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा सांड बने और इक्ष्वाकु पुत्र उन पर सवारी किए, उन बैल पर चढ़ गए, इंद्र पर चढ़ गए। और ऐसा बाण वर्षा उन्होंने किया भगवान की कृपा से, दैत्यों की बहुत बड़ी पराजय हुई। निहार करके अपनी राजधानी, अपना धन, पैसा सब छोड़ करके भाग गए। तो राजा दैत्यों के सारे नगर को बस में कर लिए, उनके धन को। इसलिए दैत्यों की पराजय के कारण इनको संज्ञा मिले पूरा पुरम जय, पुरम जय। बड़े बड़े नगरों को जीतने वाले हैं। और बैल के ककुत पर बैठने का इनको ककुष्ठ कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के लिए ककुस्थ संज्ञा आई, ककुस्थ के वंश में जन्म। ऐसे प्रतापी राजा जिनके लिए देवराज इंद्र भी वाहन बने, बैल बने, ये है अद्भुत चरित्र। और इसी वंश में अम्बरीश महाराज हुए, जो निर्भाग के पुत्र बने। अम्बरीश महाराज बहुत बड़े भक्त थे, और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गए। भगवान ने अपना दर्शन चक्र वहीं रख दिया था, जानते कभी काम आएगा। एक बार की बात है, महाराज अम्बरीश मधुबन गए थे, वृंदावन के पास ही एक मधुबन है, वो बहुत प्राचीन काल से बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बन गया था। तो वहाँ एक यज्ञ किए, यज्ञ में ब्राह्मणों को बहुत दान दिए और 60 करोड़ गऊ का दान किए। उस समय भारत पर भी सब जगह गऊँ होती थी, गो क्षेत्र ही सारा भारत था। तो महाराज अम्बरीश 60 करोड़ गऊ का दान दिए। बहुत बड़ा फीस्ट लिए, भोजन कराए, तीर्थ में द्वादशी व्रत किए थे। द्वादशी व्रत का अर्थ है दशमी से चालू करके पूरा एकादशी और पूरा द्वादशी तक उपवास रहना, और द्वादशी को अंत में पालन करना। महाराज अम्बरीश अपनी पत्नी के साथ व्रत किए थे। ब्राह्मणों को दान देने के बाद, सबको भोजन कराने के बाद वे पालन के लिए तैयार थे। द्वादशी का समय बहुत कम था। उसी समय दुर्वासा मुनि जो प्रसिद्ध ब्राह्मण है, बड़े तेजस्वी, बड़े क्रोधी, उनके यहाँ आए अतिथि बने। तो महाराज ने स्वयं प्रार्थना करके उनको भोजन के लिए राजी किया। एक दे ठीक है, मेरा संध्या का नियम पूरा नहीं हुआ है, मैं नियम पूरा करके आऊँगा तब खाऊंगा। तो दुर्वासा जी का स्वभाव था कि दूसरों को दुख देते थे, उनको बड़ा जलन था इस बात का। अम्बरीश एक गृहस्थ है, उसका बहुत बड़ा नाम है, एक काम करेंगे, इसका द्वादशी व्रत खंडित कर देंगे, पारण समय पर न कर पाए। बिना ब्राह्मण को भोजन कराए यह पारण कर लें, ये टेंडेंसी थी दुर्वासा जी। इसलिए जमुना जी के धारा में गए और मनमाना देवी करने लगे। इधर ब्राह्मणों से परामर्श करके श्री अम्बरीश महाराज पूछने लगे क्या करते हैं। द्वादशी का पारण न करना है, ये भी मेरे अपराध है, और ब्राह्मण को बिना खिलाए खा लेना ये भी अपराध है, क्या करें कि हम मेरा व्रत पूरा हो जाए, ब्राह्मण का अपराध भी न हो। तब वशिष्ठ जी ने बताया महाराज आप भगवान का चरणामृत पी करके पारण कर लीजिए, अगर बहुत देरी कर रहा है दुर्वासा जी। हो सकता है आपका व्रत खंडित हो, व्रत नहीं पूरा हो, ये भी ठीक नहीं है। इसलिए शरणामृत पी लेना व्रत पूरा करने की दृष्टि से खाना है, और ब्राह्मण को बिना खिलाए खा लेना, इसलिए पानी पी लेना भोजन भी है, नहीं भी भोजन। तो ब्राह्मणों के परामर्श से महाराज ने केवल जल पी लिया थोड़ा सा शरणामृत, पर दुर्वासा मनवाना देरी करके आया। जोग बल से उन्होंने देख लिया कि राजा इतना प्रसन्न है, उसका अर्थ है कि यहाँ पालन कर लिया। इतने से ही उनको बहुत बड़ा क्रोध आया, उनका शरीर कांपने लगा, भवें टेढ़ी हो गई, उन्होंने कहा कि इस उदंड राजा को मैं दंड दूंगा। इसका पाप देखो, ये ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के और थोड़ी देर नहीं रुक सकता था। वे जटा उखाड़े उखाड़ करके मंत्र से पटके पृथ्वी पर, उससे एक बहुत बड़ी राक्षसी कृत्या उत्पन्न हुई। महाराज अम्बरीश को मारने चली तलवार हाथ में लेकर, उसके शरीर से आग निकल रही थी। जेहू मारने के लिए चली, तभी चक्र आकर के उसको जला दिया। कृत्या को तो जला ही दिया, अब दुर्वासा की ओर झपटा। महाराज अम्बरीश जेव के तेव खड़े रहे, कृत्या से डरे नहीं, भगवान को उनको विश्वास था। कृत्या को नष्ट करके चक्र फिर उस मुनि के पीछे पीछे चला। उसमें अपार दाह है, करोड़ों सूर्य के समान दाह है। अपने दाहिका शक्ति को, अपने आँच को उगलना हुआ उनके पीछे पीछे चल गया। दुर्वासा की टांग छोटी, अब पृथ्वी पर सब जगह, पहाड़ में, समुद्र में, स्वर्ग में भागते फिरे, अंत में कहीं कोई शरण नहीं मिला। तब ब्रह्मा जी के पास गए, बोला कि हे ब्रह्मा जी, हे आत्मजोनी, आप अजित के अस्त्र से हमारी रक्षा की। तो ब्रह्मा जी कहते हैं पहले तुम यहाँ से भागो जल्दी। तुम भक्त को जान से मारना चाहते थे, यह भगवान का अस्त्र है। अगर तुम यहाँ रहोगे तो ऐसे अपराधी को शरण देने का मेरा लोक जल जाएगा। तब भाग करके कैलाश गए, जहाँ शिव जी रहते हैं। जो वहाँ जाने पर भी भगवान शिव ने वही बात कहा जो ब्रह्मा जी कहे। लेकिन शिव जी ने एक रास्ता बता दिया, जिनका ये अस्त्र है उन्हीं के शरण में जाओ, और कोई नहीं बचा पाएगा। तो दुर्वासा हार अंत में वैकुंठ गए। वैकुंठ में कोई जवन नहीं है, कोई दुख नहीं, लेकिन दुर्वासा को वहाँ भी ताप हो रहा, रो रो करके भगवान शिव से कहने लगे आप हमको बचाइए, आप हमको बताइए। लेकिन मैं कहा नहीं, कोई नहीं बचा पाएगा। अगर तुम बचना चाहते हो तो भगवान के शरण में जाओ। तो दुर्वासा अंत में वैकुंठ गए, कांप रहे थे, उनके शरीर से रक्त बह रहे थे जलन के कारण। भगवान के चरण को पकड़ करके कहे हे प्रभु, आपका नाम लेने पर तो नारकी जीव भी नरक से बच जाता है, आप हमारा प्राण कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा नहीं, अवश्य मैं शरणागत भय हारी हूँ, शरण में आए हुए का भय दूर करता हूँ, लेकिन भक्त द्रोही का मैं त्राण नहीं कर सकता। तुम भक्त अमरीश को मारना चाहते थे और अपने में अमरीश मानता थे, अम्बरीश कृपया के डर से एक पल भी आता नहीं, अब तुम चक्र के डर से तीनों लोक में घूमते रहे, तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। दुर्दर्शन ने यहाँ तक कह दिया आप ब्राह्मणों के भक्त हैं, ब्राह्मण से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि लेकिन भक्त द्रोही से नहीं। देखो ब्राह्मण, मुझे वही ब्राह्मण प्रिय है जिसमें विद्या है, विद्या के साथ नम्रता भी है। तुम में नम्रता का अभाव है, मर रहे थे खाने में, थोड़ी देर में मर जाते हैं। तुमको तो केवल मान नहीं दिया गया, वो भी भक्ति के कारण। तो जिस ब्राह्मण पे अभिमान आ जाता है तो उसकी विद्या और उसकी तपस्या बेकार है। यदि विद्या और तपस्या भी हो और नम्रता भी हो तब तो ठीक है, तुम में इसका अभाव है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, मैं रक्षा करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्त के अधीन हूँ। तो तुम यदि बचना चाहते हो तो उन्हें अम्बरीश के चरण में दिखी रहो, अम्बरीश का चरण पकड़ो। अब दुर्वासा मरता में काम नहीं करता, लौटे अयोध्या। अम्बरीश महाराज के चरण में गिरने लगे, वे तो पीछे हट गए, पीछे हट करके फिर चक्र से प्रार्थना करने लगे। कई प्रकार के प्रार्थना, यदि मैं ब्राह्मणों को इष्ट देव मानता हूँ तो चक्र शांत हो गया, लेकिन चक्र शांत नहीं हुआ। अंत में महाराज ने कह दिया कि यदि भगवान मुझ पर प्रसन्न है तो चक्र शांत हो गया, तो चक्र शांत हो गया और केबिन में चला गया। तो यह अद्भुत शरीर, परम अद्भुत। दुर्वासा जैसे अपराधी के प्रति भी कृपा रखना, वैष्णव का ऐसा स्वभाव होता है। इसको मारने के लिए कृत्या उत्पन्न किया, उस दुर्वासा के प्रति ऐसी दया ये अन्य तो नहीं मिल सकती। यह सूर्य वंश के राजाओं का अद्भुत चरित्र। भगवान ने खुद ही गीता में कहा है कि काम, कामना आग है, दुष्पूर्ण निगम दुष्पूर अनल है, ऐसी आग है पूरी नहीं होती। चंद्र वंश के दो राजाओं का मैं इतिहास सुनाया, इसमें यही सीखा है कि ये जो काम वासना है इसका कभी अंत नहीं है, कामना की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। वो पूरा करने के फेर में पड़ेगा, वो भी जलेगा, जलता रहेगा, दुष्पूर अमल है। यदि सूखे ईंधन पर घी डाला जाए तो उससे वो शांत नहीं होगा और आग बढ़ेगी। जितनी आग बढ़ेगी उतनी ही आँच निकलेगा, जितनी आँच निकलेगी उतना ही जलना पड़ेगा। संसार में आज तक किसी की कामना पूरी हुई नहीं, एक कामना पूरी हुई तो अन्य कामनाएं जन्म लेती हैं। महाराज जजाति अंत में अपनी पत्नी से बकरा बकरी की कथा कहते हैं, अपने को बताते हैं मैं ठीक बकरा हूँ, अब तुम्हारे साथ मैं 1000 वर्ष तक रहा, लेकिन दिन पर दिन मेरी वासना बढ़ती गई, ते शिक्षा है। कभी कामनाओं को पूरा करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जितना भगवान ने दिया है स्वाभाविक उसी में गुजारा कर ले, अधिक के लिए प्रयास ना करें। अधिक के लिए प्रयास करने का अर्थ है कि अधिक आँच उत्पन्न करना, अधिक जलना। अनेक बार जन्म होगा, कभी स्त्री का शरीर मिलेगा, कभी पुरुष का, लेकिन सब समय जीव जागता रहता है। शिक्षा मिलती है बड़े बड़े राजाओं के चरित्र से, उनको शांति नहीं मिलेगी। शांति कब मिली? जब मन में चले गए, भगवान की भक्ति करने लगे। प्रायः राजाओं के विषय में यही कथा है, जब राजा थे तब कोई शांति नहीं। चौथे पांडव कानन में, चौथे पांड में राजा अपने राजधानी को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर कानन में, कानन चले जाते थे, वन में रहते थे। तपोवन में तो संसार के धर्म स्वाभाविक होते रहेंगे। जनना मरना लगा रहेगा, सभी परिस्थितियों में भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम। बस एक ही स्थिति में सुख है, राम नाम लेने में। और कहीं सुख नहीं, दुख ही दुख है। महाराज अम्बरीश अपने सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते थे। सवाई मन कृष्ण पदार में बचान सिवाय पंचायन बना, वे अपने मन को भगवान के रूप में रखते, चिंतन में अपने वाणी को भगवान के गुणानुवाद में, और दूसरे की वाणी को अपने कान में रखना। अन्य वैष्णव जब कथा कहते हैं तो उसको सुनना चाहिए। करो हरे मन निर्मल मन, अपने दोनों हाथों से हरि के मंदिर के बारे में देखना। मुकुंडलिंगा वह दर्शन दिखल, अपने दोनों हाथों से भगवान के श्री विग्रह को देखना चाहिए और अपनी जिह्वा को भगवान के प्रसाद में रसना पदार्पित है। सिर को प्रणाम करने में रख, तो सुख यहाँ है भगवान के दर्शन में, भगवान की कथा सुनने में, भगवान के कीर्तन सुनने में। जय श्री प्रभुपाद।
सुंदर जी जगत गुरु श्री रूपानंद जी।